ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी प्यारी परमादरणीय जानकी दादी हमेशा 3 बार ओम शांति बोलती थी, और इसीलिए बोलती थी ताकि हर समय हमें ये याद रहे कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मुझे सदा उमंग उत्साह में रहना है ना? तो सदा उमंग उत्साह में कैसे रहेंगे? क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे उमंग उत्साह का ही यादगार द्वापर से लेकर के लोगों ने उत्सव मनाना चालू किया, यानी इतना पावरफुल यादगार है हमारा जो थोड़ी क्षणों के लिए भी कोई त्योहार आता है तो लोग उत्साह में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई आज कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो किसी के मन को दुख हो या जिससे हमें दुख हो। तो बाबा कहे तुम ब्राह्मणों का जीवन कितना श्रेष्ठ है कि सदा उमंग उत्साह में रहना, या ये कहे कि उमंग उत्साह, ये दोनों हमारे जीवन के पंख हैं जिससे सदा उड़ती कला की ओर हमें आगे बढ़ना है, नीचे की ओर कभी नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ खाली हमें उमंग उत्साह में रहना है ये नहीं, लेकिन हमारे बोल ऐसे हो जो दूसरों को भी मोटिवेट कर दे, उनको भी उमंग उत्साह में ले आए। लेकिन उसके लिए जैसे आज बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि हंसी मजाक जरूर करो लेकिन लिमिट में करो। हंसी मजाक कैसी होनी चाहिए ये भी बाबा ने सिखाया कि हंसी मजाक से वातावरण को जरूर लाइट करे लेकिन उसमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमारे हंसी मजाक का एम किसी और को नीचा दिखाना नहीं होता है, लेकिन हंसी मजाक ऐसी हो जो लाभ पहुंचाए, हरेक के जीवन के अंदर लाभ पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, उससे वो अपने आप में कोई सीख ले ले। इतनी रॉयल भाषा से हम उस हंसी मजाक में भी आए जो किसी का उसके बाद व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए कि कहीं उसने मुझे इनडायरेक्ट वे में तो नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। तो हर एक को जहां फायदा हो, प्राप्ति हो, ऐसी हंसी मजाक और समय और स्थान देखते हुए हंसी मजाक करें। ऐसे नहीं समय किसी और चीज का हो और उस समय हम बिना मतलब के कोई ऐसी बात बोले तो लोग भी सोचे कि क्या है, इसको समझ ही नहीं है कि कौन सा स्थान है ये, कौन सा समय चल रहा है ना? तो मर्यादा पूर्वक हो, साथ में किसी को फील न हो, उनको प्राप्ति हो, फायदा हो, ऐसे उमंग उत्साह भरे बोल जो दूसरों को भी मोटिवेट कर दे, उसका भी दुख दर्द कम हो जाए और वो खुशी में आ जाए। इसके जैसा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। और जब ऐसा पुण्य का कार्य करते हैं तो दुआएं प्राप्त होती है। तो उमंग उत्साह ही हमारे जीवन में दुआओं को कमाने का श्रेष्ठ तरीका है, जो किसी को खुशी दे सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी को खुशी तो है नहीं। और अगर हमारे द्वारा किसी को खुशी प्राप्त होती है तो उससे बड़ी दुआओं को प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है। और जो ऐसे दुआओं का खाता जमा करता जाता है, जो ऐसा पुण्य का कार्य करता है, जो कोई दिल शिकस्त आत्मा को भी उमंग उत्साह में ले आए, तो यही तो बाबा का कार्य है। बाबा भी क्या करता है, सबके अंदर उमंग उत्साह भर करके उनको मोटिवेट कर देते हैं, खुशी में ला देते हैं। सारे ब्राह्मण खुश हो जाते हैं बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा के बच्चे हम भी, दाता के बच्चे हैं, तो हमें भी सदा खुशी देना है, उमंग उत्साह सब में भरना है। लेकिन उमंग उत्साह को कम करने वाली बातें कौन सी है और उमंग उत्साह में आने का आधार क्या है? तो देखा जाता है कि जब हम बीती बातों को याद करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो उससे उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहे, बीती को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। बीती को चितवो नहीं, क्योंकि वो हमेशा उमंग उत्साह को कम करता है। जो बीत गई वो बात गई, उसको सोच सोच करके फायदा नहीं, उसको सोच करके कोई प्राप्ति नहीं। इसीलिए सदा आगे बढ़ते चलो, बीती बातों को याद नहीं करो। बीती बातों को याद करने से क्या होता है, एक तो दुख मिलता, दिल शिकस्त हो जाते हैं, दूसरा हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है और अपना आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है, रिग्रेट होने लगते हैं, अफसोस होता है और कभी कभी अपनी शक्ति के ऊपर भी संशय आने लगता है। इसलिए बाबा कहते, बीती बातों को चितवो नहीं। बीती बातें बीत गई सो बात गई, समाप्त हो गई, बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। उसमें से हाँ सीख ले ले, लेकिन सीख ले करके दोबारा वो गलती ना हो, तो ये ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। दूसरा उमंग उत्साह कम करने का कारण है, जो आज बाबा ने मुरली में सवेरे कहा, कि जब हम व्यर्थ विचार करते हैं, नेगेटिव विचार चलाते हैं, तो हमारा उमंग उत्साह कम होना ही है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे समर्थ सोचो, शक्तिशाली सोचो, कमजोरी की बातें नहीं सोचो, वो व्यर्थ के खाते में चली जाती है। नेगेटिव बातों को नहीं सोचो, नेगेटिव बातें भी हमारे उमंग उत्साह को कम कर देती है। तो ऐसा दृष्टिकोण हम अपनाएं, ऐसा एटीट्यूड हम अपनाएं कि अगर कोई ऐसी बात आई भी तो उसमें भी हम पॉजिटिव बातों को सोचें कि क्या ये बात आई है, क्या देने के लिए आई है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी तूफान आता है तो उसमें भी तोहफा होता है, तूफान में भी तोहफा होता है, कोई गिफ्ट होती है, एक्सपीरियंस की गिफ्ट प्राप्त होती है। तो इसीलिए कोई भी बात आती है तो नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाने के बजाय इसमें से भी हमें क्या प्राप्ति हुई ये सोचो, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। हाय ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और जैसे नेगेटिव सोचना शुरू किया सारा उमंग उत्साह क्षीण हो जाता है। तीसरी बात, उमंग उत्साह कम तब होता है जब हम किसी की भी कमजोरी को देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी की कमजोरी नहीं देखो, विशेषता को देखो। विशेषता देखेंगे तो खुश रहेंगे, हिम्मत आएंगी अपने अंदर भी कि जैसे इसने किया हम भी करें, उम्मीद जागृत होंगी और उत्साह आएगा। लेकिन जैसे किसी की कमजोरी देखेंगे तो क्या होगा, सारा प्रेशर उमंग उत्साह का कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहे विशेषता देखो, विशेषता देखने वाला विशेष आत्मा बन जाता है और उसकी खुशी बढ़ती है, उसके अंदर भी एक उम्मीद जागृत होती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो स्वयं में भी हिम्मत जागृत होती है। और जहां हिम्मत होती है तो कहा जाता है हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, है ही है। बाबा की मदद का अनुभव हिम्मत के कदम बढ़ाने से ही तो होती है। इसलिए बाबा कहते कभी भी आधा शब्द याद नहीं रखो, बाबा मदद करता नहीं, बाबा मदद करता नहीं। बाबा का कंडीशन ये है, हिम्मत का पहला कदम आप उठाओ, फिर 100 कदम बाबा मदद के लिए, 100 क्या 1000 कदम मदद करने के लिए बाबा खड़ा है ना। लेकिन हिम्मत का कदम तो उठाओ। तो वो कब होगा, जब हम किसी की विशेषता देखेंगे, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता, तो हमारे अंदर भी उमंग आएगा, अगर ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, है ना। इसलिए तो कहा जाता कि उमंग उत्साह ये ब्राह्मण जीवन का श्वास है, आगे बढ़ने का श्वास है ये। ठीक इसी तरह बाबा कहे कि जितना विशेषता देखते जाएंगे, सबकी विशेषता देखते देखते हम अपने अंदर वो विशेषता को ग्रहण करते करते रियल में विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ऐसी विशेष आत्माओं को देखना चाहते हैं। आज जैसे बाबा ने कहा, सेवा समाचार सुनते सुनाते सेवाधारियों की कमजोरी का वर्णन करने लग जाते हैं, तो जब सेवाधारियों की कमी कमजोरी इसके अंदर, ये कमी कमजोरी इसके, अरे भाई हरेक के अंदर है, अपने अंदर भी है। लेकिन जब हम दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं तो हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं आता है, धीरे धीरे हमारा उमंग उत्साह कम होना ही है। इसलिए विशेषता को देखो, वाह, है ना, विशेषता देखते हुए आगे बढ़ो, तो स्वयं में इतनी विशेषताएं इकट्ठी हो जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब विशेषता देखने का चश्मा पहन लेते हैं तो खुद के अंदर भी वो विशेषता समाने लगती है, और समाते समाते ही विशेष आत्मा बन जाते हैं। और बात कि उमंग उत्साह हमारा सदा बना रहे, उसके लिए प्रश्न चित्त नहीं बनो, प्रसन्न चित्त रहो। प्रश्न चित्त कैसे बनते हैं, कोई भी बात आई, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, का करने लग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं। और हम सभी ब्राह्मण कौन है, होली हंस है, तो होली हंस की चाल चलो, कौवे की चाल नहीं चलो, है ना। क्योंकि कौवा कभी किसी को प्रिय नहीं लगता है, हंस सबको प्यारा लगता है। तो हम भी ऐसे होली हंस बने, क्यों क्या कब कैसे कहां, ये प्रश्नात्मक बुद्धि न बने। जितना व्यक्ति प्रश्नात्मक बुद्धि बन जाता है उतना उसका उमंग उत्साह कम होना ही है, क्योंकि उसको कई चीजों का आंसर्स मिलता नहीं है। वो बार बार प्रश्न पूछता है लेकिन आंसर नहीं मिलता है, तो उमंग उत्साह तो कम होगा ना, दिल शिकस्त होने लगेगा। इसीलिए बाबा कहते वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करो। वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करो। तो वाह वाह करने से कोई चीज अगर वाह वाह नहीं भी होंगी तो भी वाह वाह हो जाएगी, करके तो देखो, है ना। वाह वाह करने से हमारा इंटरनल बैलेंस बना रहता है, स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो जाती है। जब वाई वाई करने लगते हैं या प्रश्नात्मक बुद्धि हो जाती है तो जैसे बाबा कहते प्रश्न माना टेढ़ा रास्ता, टेढ़ा रास्ता जंगल में ले जाता है, और जंगल में जाएंगे तो कांटे तो लगेंगे, चुभेंगे ही, तो दुख दर्द वाला रास्ता है। इसलिए बाबा कहते बिंदी लगाओ, वाह वाह करो। अपने यज्ञ में एक भाई था, उसने बाबा की ये बात इतनी पक्की कर ली थी कि जो कुछ भी उसके सामने आता था, भोजन भी आता था, तो भी भोजन को दृष्टि देखते हुए देते हुए बाबा को कहता था, वाह बाबा वाह, क्या सुंदर ब्रह्मा भोजन मिला है। सिंपल भोजन होता था लेकिन उसने अपने अंदर ये आदत कल्टीवेट किया कि वाह वाह बोलना है। तो भोजन सिंपल होने के बाद भी जब वो वाह वाह करता था ना, तो उसको ऐसा महसूस होता था जैसे 56 प्रकार के भोग में खा रहा। उसको एक बार पूछा गया कि भाई आप वाह वाह क्यों करते, सिंपल दाल भात सब्जी रोटी है। तो कहते ये भी तो मिल रहा है, आगे चल कर खेत खाली दाल रोटी मिलने है, वो भी हम बच्चों को बाबा ने गारंटी दिया है, दुनिया वालों को तो वो भी नसीब नहीं होने वाली है। तो ये भोजन मिलना भी तो वाह वाह है, खुश होता था, है ना। कभी वो भोजन के अंदर नमक मिर्ची कम हो जाती थी, जैसे कम उसको लगा स्वाद में, कहता वाह बाबा क्या भोग तुमने स्वीकार किया आज, है ना। क्योंकि पहले तो बाबा को भोग लगता है फिर हम स्वीकार करते, तो जिस दिन उसको लगा कि आज नमक कम है मिर्ची ज्यादा है, तो कहता था वाह बाबा आज तुमने कैसा भोजन स्वीकार किया, अगर तुमने किया तो मैंने भी कर लिया, तो खुशी होती थी। वो भोजन खाने में भी उसको खुशी होती थी, वो कंप्लेन कभी नहीं करते थे, अरे ये क्या भोजन दे दिया, है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि अभी कंप्लेन करने से फायदा नहीं, अब बन गया है, अगर कंप्लेन करेंगे ले लेंगे थाली से उठा लेंगे दूसरा कुछ देंगे तो वो तो वेस्ट जाएगा ना, फेंकना पड़ेगा। तो सोचता था कि बाबा को अगर ये भोग लगाया और बाबा ने स्वीकार किया तो मुझे भी स्वीकार करना है। तो जैसे ही हम कहते वाह बाबा क्या भोजन आज तुमने स्वीकार किया, तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, तो कभी कोई बात में उसको गुस्सा नहीं आता था, हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति में खुश रहता था, है ना। तो यही तो बाबा हमें सिखाता है कि बच्चे कभी भी कोई भी परिस्थिति में कंप्लेन नहीं करो, ये ऐसा कैसा है, ये ऐसा कैसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रश्नात्मक नहीं बनो, फुल स्टॉप लगाओ, है ना। और जितना फुल स्टॉप लगाएंगे खुश रहेंगे उतना, खुशी में, जैसे बाबा नहीं कहते खग्गिया मारते रहो, खुशी में खग्गिया मारते रहो, उमंग उत्साह में चलते रहो, हमारी उमंग उत्साह को देखकर दूसरे के अंदर भी उमंग उत्साह आ जाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये बाबा हमारा जीवन चाहता है। उसको बाबा क्या कहते हैं पता, सपूत बच्चा। उसको बाबा टाइटल देता है सपूत बच्चा। कंप्लेन करने वाले को सपूत कहेंगे क्या, कंप्लेन निकालने बैठो तो कितनी कंप्लेन निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा का एक कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लीट बनता ही नहीं है। और हम बच्चों को क्या करना है, कंप्लीट बनना है। तो कंप्लीट बनना है तो कंप्लेन नहीं करो। ड्रामा वंडरफुल है, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, है ना। तो वाह वाह के गीत गाने से क्या होगा, वाह वाह बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। बाकी कंप्लेन करने के लिए बैठो तो इतनी कंप्लेन निकलती जाएंगी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, और उसकी लाइफ में कभी कंप्लीट अनुभव होगा ही नहीं। बाबा ने तो हम बच्चों को पहले ही कह दिया है कि बच्चे ये दुनिया है ही इनकम्प्लीट, है ही इनकम्प्लीट, कोई है कम्प्लीट इसमें? तो इसीलिए कंप्लेन निकालना चाहो तो हजारों कंप्लेन निकल सकती, लेकिन ये इनकम्प्लीट दुनिया में ही हमें कंप्लीट बनना है, संपूर्ण बनना है। तो कैसे बनेंगे? तो कंप्लेन करने से कभी नहीं बन सकते, लेकिन वाह वाह के गीत गाते चलो तो वाह वाह बन जाएंगे। और इतना खुशी का अनुभव होगा, हर दिन ऐसा बीतेगा जैसे आगे बढ़ रहे हैं, संपूर्णता की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा हमारे साथ है, हजारों भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, ये फील करेंगे। क्योंकि जहां खुशी है, लाइटनेस है, उमंग उत्साह है, वहां बाबा है। जहां दुख है, कंप्लेन है, उदासी है, दिल शिकर, वहां बाबा नहीं रहता है। तो बाबा का साथ किसको अनुभव होगा, जो सदा खुशी में रहते हैं, हर हाल में, हर परिस्थिति में, जो कंप्लेन नहीं करते लेकिन खुश रहते हैं, उसके साथ बाबा रहेगा ना। तो ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड होने का अनुभव करो कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। और जब कंबाइंड फील करेंगे तो सब ठीक लगेगा, क्योंकि हमने कंप्लीट पने का चश्मा पहन लिया तो सब अच्छा ही लगेगा। ड्रामा बहुत सुंदर महसूस होगा, ये फील ही नहीं होगा जैसे ड्रामा में कोई कंप्लेन करना है। इसलिए बाबा कहते हैं वाई वाई नहीं करो, वाह वाह का गीत गाओ, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, है ना, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह के गीत गाने से हर चीज वाह वाह हो जाए, खुश हो जाएंगे। दूसरा, चौथी बात कि सदा उमंग उत्साह में रहना है तो अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। बाबा कहते हैं ना, अपनी श्रेष्ठ शान से नीचे उतरते हैं तो परेशान होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ शान में रहने के लिए श्रेष्ठ स्वमान को धारण, जितना हमारा श्रेष्ठ स्वमान होगा, उस श्रेष्ठ शान की सीट पर बैठेंगे तो कोई भी बात परेशानी करने वाली अगर आई भी तो भी हमें परेशान कर नहीं सकती है, क्योंकि हम अपने सीट पर है। जो सीट से नीचे उतरता है वो परेशान होगा। तो सदा उमंग उत्साह में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेष्ठ स्वमान सुबह सुबह धारण कर लो और उसको हर समय फील करो, महसूस करो। आप लोगों को भी रोज सुबह स्वमान मिला ना, तो खाली भट्टी में मिला उसके लिए नहीं, परेशान न हो उसके लिए ये श्रेष्ठ स्वमान है। कि जितना वो श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहेंगे तो कोई भी बात आएगी आएगी और नीचे से चली जाएगी, वो हमें इफेक्ट नहीं कर सकेगी, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। आपको देख करके दूसरों को भी आए, अरे इतनी बड़ी परीक्षा उसके सामने आई, इतनी बड़ी समस्या उसके सामने आई, लेकिन जैसे उसको कोई इफेक्ट ही नहीं किया, तो उसके अंदर भी हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी? वो भी आकर के आपसे पूछेंगे, अरे भाई आप सदा खुश कैसे रह सकते, इतनी बड़ी समस्या आई लेकिन आपके चेहरे पर कोई रंज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख की रेखाएं नहीं, कैसे हो सकता है? तो क्योंकि बाबा ने हमें सबसे बड़ी सीट दी है श्रेष्ठ स्वमान की, इतना बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट हमें दिया है, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट में जब हम स्थित हो जाते, उस स्वमान में जब हम स्थित हो जाते, तो कोई भी बात हमें इफेक्ट नहीं कर सकती है, अपनी उस शान से, उस खुशी से नीचे ला नहीं सकती है, और ही दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करके देखें, तो उनके अंदर भी उमंग उत्साह आएगा कि चलो हम भी करके देखें इसके जैसा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सन शोज फादर, आपका जीवन ऐसा हो, ऐसा खुशनुमा हो, उमंग उत्साह भरा हो, जो दूसरों को भी परमात्मा साक्षात्कार कराए, दूसरों को भी प्रेरणा दे कि हाँ यहाँ जाने से देखो इसका उमंग उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता है। पहले क्या जीवन थी रोने वाली, और अब क्या जीवन बन गई है खुशी में रहने वाली, है कि नहीं ऐसे? तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसे खुश रहो, जब खुशी का खजाना मिल गया है हमें, खुशी जैसी खुराक प्राप्त हो गई है, उससे बड़ी खुराक तो और कोई नहीं होती है, उससे बड़ा खजाना और कोई नहीं होता है, तो सदा उमंग उत्साह में रहो ना। ये उमंग उत्साह हमारा कभी कम नहीं होना चाहिए, ये सोडा वाटर की तरह नहीं होना चाहिए, जरा सा उभर आए और फिर बैठ गया, है ना? ऐसा नहीं कि सुबह सुबह हाँ मुरली सुनी, बड़ा खुश हुए, और फिर देखो दिन में बैठ गया वो सोडा वाटर की तरह हो गया, नहीं, सदा खुश रहे। वो जो इंजेक्शन सुबह सुबह बाबा की मुरली से खुशी का लग जाए, सारा दिन उसका इफेक्ट रहना चाहिए, है कि नहीं? रोज सवेरे सवेरे एक ऐसा खुशी का इंजेक्शन लग जाता है और सारा दिन हमारा क्या हो जाता है, धन्य धन्य हो जाते हैं। जो खुश रहता है वो क्या कहते हैं, धन्य धन्य है, माना हर प्रकार से फुल है, धन्य धन्य माना हर प्रकार से हम धन्य हो गए, बाबा के बने तो धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे ये उमंग उत्साह श्वास है ब्राह्मण जीवन का, इसको कभी खत्म नहीं होने दो, ये रेखा कभी नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल, कि बाबा के जब हम बनते हैं ना, शुरू शुरू में जब कोर्स किया और रोज मुरली सुनने लगे तो इतना उमंग उत्साह चालू होता है, लेकिन फिर धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ ऐसा होता है, है नहीं? जो कहते हैं बाबा के पास जब हम आए ना शुरू शुरू में, तो बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी, लेकिन क्या आज वही खुशी है जो पहले थी, है कि कम हो गई और ज्यादा हो गई कि कम हो गई? ऐसा है कि खुशी ब्राह्मण जीवन में चलते 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 जैसे जैसे आलस अलबेलापन आया तो खुशी कम होनी है, ये ग्राफ जो है ना नीचे जाएगा। शुरू शुरू में हमारे जीवन के अंदर बड़ी उमंग उत्साह रही, खूब खुशी में रहे, उसका कारण क्या था? क्योंकि जैसे पुरानी जीवन से ये जीवन एकदम नई हो गई, हमारे विचारों में नवीनता आ गई, हमारी भावनाओं में नवीनता आ गई। हर रोज जैसे बाबा की मुरली सुनी तो नवीनता से भर गए, तो खुश रहते थे। जितना खुश रहेंगे, हल्का रहेंगे, उतना बाबा की मदद का भी अनुभव होगा। लेकिन चलते 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 होता क्या है, इधर उधर देखना चालू करते हैं। बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, तो उमंग उत्साह में रहेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सी ब्रदर सिस्टर कर देते हैं, इधर उधर देखना चालू किया। मधुबन में आए, एक कमरे में रहे तो लगा, अरे मैं तो देखो सुबह सुबह इतना खुशी से अमृत वेला उठ करके जाने लगा और ये मेरा साथी सोया पड़ा है, तो कमजोरी देखी ना। फिर सोचते हैं ये हमारे से पुराना, ये अभी तक सोया पड़ा है, तो दूसरे दिन हमारे अंदर भी आलस आ जाता। तो सी ब्रदर सिस्टर किया तो क्या होगा, सी ब्रदर सिस्टर करेंगे तो खुशी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हमारा उमंग उत्साह सोडा वाटर होने लगता है, कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नो सी ब्रदर सिस्टर, सी फादर फॉलो फादर। बस सी फादर फॉलो फादर करो, सदा खुशी में उड़ेंगे। अरे भाई जो पुराना है आपके कमरे में, अगर वो सुबह नहीं उठा और हम उठ करके भागे, भागने के बाद वहां बैठ करके देखते हैं वो आया कि नहीं आया, आया कि, तो मेरा योग बाबा से लगा लगा हैं? नहीं लगा ना। इसके बदले तो अगर वो नहीं उठ पाया, मानो उसने कोई रात को दवाई लिया है, जिस दवाई का नशा है जिस कारण वो नहीं उठ सका, पुराना है, तो क्या करो, उसको धीरे से जगा दो, भाई अमृत वेला उठो, चलो हमारे साथ, है ना, हम मदद करते तेरे को, उसको लेकर के आओ, फिर देखो आपका योग कितना अच्छा लगेगा। बजाय के भले सोया रहे, मैं अपनी कमाई कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद बार बार देखा वो आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, देखा नहीं आया ना, हाँ? अब मेरा संकल्प चलने लगे तो मेरा योग कहाँ लगा, तो मैंने क्या प्राप्ति किया? उसने तो नहीं किया, वहीं सोया रहा, उसने तो नहीं किया, लेकिन मैंने क्या प्राप्ति किया? मेरा उमंग उत्साह बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप पुण्य का काम करो, उसको उठा दो कि भाई चलो, है ना, हम साथ में चलते हैं, तो उसको भी कितनी खुशी होगी, उसको थैंक्स देंगे आपको, और आकर के दोनों जब बैठेंगे बाबा को याद करने तो योग कितना अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सी ब्रदर सिस्टर नहीं करो, हरेक की शारीरिक प्रॉब्लम्स अपनी है, पुराना शरीर है चला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन पुराना शरीर चलाते हुए अगर कभी कभी वो सुस्त हो जाते हैं तो उसको देख करके हम भी सुस्त हो जाए कि चलो ये तो कल गया नहीं और चलता है, इसका मतलब हम भी नहीं गए तो चलता है, तो आंख खुली भी बाबा ने उठाया भी, लेकिन उसको सोया हुआ देख करके हम भी सो जाए रजाई ओढ़ करके, तो क्या होगा, प्राप्ति क्या हुई, जीरो। और वो दिन सारा दिन अंदर में कॉन्शियस बाइट करता रहेगा, बाबा ने तो उठाया भी लेकिन हम उठ करके गए नहीं, क्यों नहीं गए, सी ब्रदर सिस्टर किया इसीलिए। तो बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा अंतिम घड़ी भी कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं किया। तो हम इधर उधर क्यों देखते हैं? हमें क्या करना है? सदा बाबा को देख करके बाबा से शक्ति अंदर में भरनी है और आगे बढ़ना है और दूसरों को भी साथ लेकर के बढ़े। अगर कोई सुस्त है, एक बहुत सुंदर अभी किसी ने वो भेजा था कि जो अपंग बच्चे होते हैं उनका रेस रखा गया, तो जब रेस रखा गया तो एक बच्चा गिर गया, एक बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया। तो आज का मनुष्य अगर कोई नहीं गिर रहा है तो भी धक्का मार के गिराता है और आगे जाता है, लेकिन वो अपंग बच्चे थे सारे, मेंटली थोड़े रिटार्डेड थे, पूरा ब्रेन भी उनका डेवलप, तो वो जैसे गिर गया ना तो सारे के सारे वहां पहुंच गए और वो गिरा हुआ था उसको उठाया और सब हाथ पकड़ करके सब फर्स्ट नंबर आ गए, दौड़े तो रेस में सब फर्स्ट नंबर आए। तो सारी सभा ने इतनी तालियां बजाई, ये प्रैक्टिकल हुआ अभी कहां पर, ये प्रैक्टिकल हुआ कि सारी सभा ने इतनी तालियां बजाई कि हमें ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों से सीखना चाहिए कि हम रेस में एक दूसरे को गिरा देते हैं, लेकिन ये गिरे हुए को उठा करके सब हाथ पकड़ करके सब दौड़ने लगे और उस मंजिल पर पहुंच गए। ये उमंग उत्साह बाबा हम बच्चों को दिलाता है कि अगर आप देखो कि किसी की शारीरिक प्रॉब्लम के कारण अगर वो थोड़ा चलने में सुस्त हो रहा है, आलस अलबेलापन उसको आ रहा है, तो उसको क्या करो, अरे चलो हम तुम्हारे साथ है ना, तो उसको खुशी दो, उमंग दो, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और जब इस तरह से हाथ में हाथ हम दोनों बाबा के पास जाकर के फर्स्ट नंबर में जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में, तो बाबा को भी खुशी होगी कि नहीं होगी ऐसे बच्चों को देख करके, न कि उसको सोया हुआ देख करके मैं भी आलस अलबेलापन में आकर के रजाई ओढ़ करके सो जाऊं, ये बाबा हमें नहीं सिखाता है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उसको भी साथ ले करके हाथ में हाथ दे करके दोनों चलना चालू करो तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंच जाएंगे और दोनों जीत जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को विजयी बनने का, और खाली हम विजयी बने ये नहीं, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार हम एकता के सूत्र में बंद करके विजयी अनुभव करें, ये बाबा हम बच्चों को सिखाता है। ये हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहना चाहिए, ये उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं न बीती बातों को देखो, न चितवो उसको, न नेगेटिव और व्यर्थ दृष्टिकोण अपनाओ, सदा समर्थ शक्तिशाली दृष्टिकोण अपनाओ, न किसी की कमजोरी देखो, विशेषता देखो और विशेषता देखते हुए आगे बढ़ो, और हर तूफान का सामना करने के लिए भी संगठित रूप में एक दृढ़ संकल्प के साथ अगर करेंगे तो सहज ही कोई भी बड़े से बड़ा तूफान भी तोहफा बन जाएगा। राय का पहाड़ नहीं बनाओ, पहाड़ का राय बनाओ, कहा ना आज बाबा ने मुरली में, कथाएं नहीं बनाओ, लेकिन कथाओं को बहुत इंटरेस्टिंग चटनी बना देते हैं, मिक्स चटनी बना देते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा आज कि कोई भी बड़ी बात हो तो उसको भी छोटी कर दो और छोटी करके उसको सार स्वरूप में ले आओ, बिंदी लगाना सीखो, प्रश्नात्मक नहीं बनो, क्योंकि प्रश्नात्मक बनेंगे तो संशयात्मक बन जाएंगे, इसलिए बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो और अपनी श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहो, शान से नीचे नहीं आओ, नहीं तो परेशान हो जाएंगे और परेशान हुए माना उमंग उत्साह गायब। तो ये उमंग उत्साह हम ब्राह्मण जीवन के पंख है जो हमें सदा उड़ती कला की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
बने अब जी को भाई।